परमेश्वर का नियम .org। परिशिष्ट 7:10, 11 और 12 और व्यभिचार में झूठी समानता। अलाक की शिक्षा में मरकुस 10 का अर्थ। यह लेख मरकुस 10:11 और 12 की उन गलत व्याख्याओं को खारिज करता है जो यह सुझाव देती हैं कि यीशु ने व्यभिचार में पुरुषों और स्त्रियों के बीच समानता सिखाई, या यह कि यहूदी संदर्भ में स्त्रियां भी तलाक की पहल कर सकती थीं। प्रश्न, क्या मरकुस 10:11 और 12 यह प्रमाण है कि यीशु ने तलाक पर परमेश्वर की व्यवस्था बदल दी? उत्तर, यह प्रमाण नहीं है। सिर्फ वो है कि मरकुस 10:11 और 12 में यीशु सिखाते हैं कि एक, स्त्री भी व्यभिचार की शिकार हो सकती है, और दो, स्त्री भी अपने पति को तलाक दे सकती है। धार्मिक व्याख्या एक्सेगेसिस का एक मूल सिद्धांत यह है कि किसी भी सिद्धांत का निर्माण केवल एक पद के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए। संपूर्ण बाइबल संदर्भ पर विचार करना आवश्यक है, जिसमें यह भी शामिल है कि अन्य प्रेरित पुस्तकों और लेखकों ने क्या कहा है। यह सिद्धांत शास्त्र की शिक्षाओं की अखंडता बनाए रखने और अलग थलग या विकृत व्याख्याओं को रोकने के लिए आवश्यक है। दूसरे शब्दों में, मरकुस के इस वाक्यांश से निकाले गए ये दोनों गलत निष्कर्ष इतने गंभीर हैं कि हम यह दावा नहीं कर सकते कि यहाँ यीशु ने वह सब बदल दिया जो परमेश्वर ने पितृपुरुषों के समय से इस विषय पर सिखाया था। यदि यह वास्तव में मसीह की नई शिक्षा होती तो यह अन्यत्र भी और अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देती, विशेषकर पहाड़ी उपदेश में जहाँ तलाक के विषय को संबोधित किया गया था। हमें कुछ इस प्रकार मिलता, तुमने सुना है कि प्राचीनों से कहा गया, कोई पुरुष अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरी कुमारी या विधवा से विवाह कर सकता है, पर मैं तुमसे कहता हूं, यदि वह अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरी से मिल जाता है तो वह पहली के विरुद्ध व्यभिचार करता है। लेकिन स्पष्ट है ऐसा नहीं है। मरकुस 10:11 और 12 की व्याख्या। मरकुस 10 बहुत ही संदर्भित है। यह खंड ऐसे समय में लिखा गया था जब तलाक बहुत कम नियमों के साथ होता था और दोनों लिंग इसकी पहल कर सकते थे। यह मूसा या शमूएल के दिनों की वास्तविकता से बहुत अलग था। बस यह विचार कीजिए कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को क्यों कैद किया गया था। यह हेरोदेस का पलिस्तीन था, पितृपुरुषों का नहीं। उस समय यहूदी विवाह, शारीरिक रूप, स्त्री नेतृत्व आदि के मामलों में यूनानी रोमी समाज की रीति रिवाजों से काफी प्रभावित थे। किसी भी कारण से तलाक का सिद्धांत, रब्बी हिल्लेल द्वारा सिखाया गया किसी भी कारण से तलाक का सिद्धांत यहूदी पुरुषों पर सामाजिक दबाव का परिणाम था, जो पतित मनुष्य होने के नाते अपनी पत्नियों से छुटकारा पाकर अधिक आकर्षक, कम उम्र की या धनी परिवारों की स्त्रियों से विवाह करना चाहते थे। दुर्भाग्य से ये मानसिकता आज भी जीवित है, यहाँ तक कि कलीसियाओं के भीतर भी, जहाँ पुरुष अपनी पत्नियों को छोड़कर अन्य स्त्रियों से जुड़ते हैं, लगभग हमेशा वे भी जो पहले से तलाकशुदा होती हैं। इन केंद्रीय भाषाई बिंदु, मरकुस 10:11 के खंड में तीन मुख्य शब्द हैं जो पाठ के वास्तविक अर्थ को स्पष्ट करने में सहायता करते हैं। Και λέγει αυτής, ως εάν απολύσει την γυναίκα αυτού και γαμίσει άλλην, μιχάτε επ αυτήν. Γυναίκα, γυναίκα, κα εκ βαξεν κρμ κάρακ ρούπ χε, γιο βεβαχικ σανδρμπο με, γεσε Μαρκούς 10:11, βισέσ ρούπ σε βεβαχιτ στρί κε λιε, πραγιουκτ χωτα χε, νακι σαμάνια ρούπ σε στρί κε λιε. Γιε δερσάτα χε, कि यीशु का उत्तर विवाह की वाचा के उल्लंघन पर केंद्रित है, न कि विधवाओं या कुंवारियों के साथ नए वैध संबंधों पर। एप एक पूर्व सर्ग है जिसका सामान्य अर्थ है पर, के साथ, के ऊपर, के भीतर। यद्यपि कुछ अनुवाद इस पद में के विरुद्ध चुनते हैं, यह एपी का सबसे सामान्य अर्थ नहीं है, विशेषकर भाषाई और धार्मिक संदर्भ में। दुनिया में सबसे अधिक प्रयुक्त बाइबल न्यू इंटरनेशनल वर्जन NIV में उदाहरण के लिए एपी के 832 प्रयोगों में से केवल 35 बार इसका अनुवाद अगेंस्ट के रूप में किया गया है, बाकी में पर, के ऊपर, के भीतर, के साथ का भाव है।
auf tien, auf tos सर्वनाम का स्त्रीलिंग एक वचन कर्मकारक रूप है। बाइबल यूनानी कोरिने व्याकरण में मरकुस 10:11 के अनुसार auf tien उसे यह निर्दिष्ट नहीं करता कि यीशु किस स्त्री का उल्लेख कर रहे हैं।
व्याकरणिक अस्पष्टता इसलिए उत्पन्न होती है क्योंकि दो संभावित पूर्वगामी हैं।
टीन गिनाय का अफ्तू उसकी पत्नी पहली स्त्री, अल्लन दूसरी स्त्री, दोनों स्त्रीलिंग एक वचन कर्मकारक में है और एक ही वाक्य संरचना में आती है, जिससे अफ्तीन का संदर्भ व्याकरणिक रूप से अस्पष्ट हो जाता है।
संदर्भानुसार अनुवाद। मूल भाषा में जो पढ़ा जाता है उसे देखते हुए ऐतिहासिक, भाषाई और धार्मिक संदर्भ के अनुरूप सबसे उपयुक्त अनुवाद होगा।
चुगुई अपनी पत्नी यनेका को छोड़कर दूसरी, अर्थात दूसरी यनेका जो पहले से किसी की पत्नी है, से विवाह करता है, वह उसके साथ एपी व्यभिचार करता है।
विचार स्पष्ट है, जो पुरुष अपनी वैद्य पत्नी को छोड़कर दूसरी स्त्री से जुड़ता है जो पहले से किसी अन्य पुरुष की पत्नी है, अर्थात कुंवारी नहीं है, वह इस नई स्त्री के साथ व्यभिचार करता है, एक आत्मा जो पहले से किसी अन्य पुरुष से जुड़ी है।
अपोलियो क्रिया का वास्तविक अर्थ। जहां तक इस विचार का संबंध है कि मरकुस 10:12 स्त्री द्वारा प्रारंभ किए गए कानूनी तलाक और उसके बाद दूसरे पुरुष से विवाह के लिए बाइबल समर्थन प्रदान करता है, यह मूल बाइबल संदर्भ में कोई आधार नहीं रखने वाली कालभ्रमित व्याख्या है।
पहला कारण यह है कि उसी पद में यीशु वाक्य समाप्त करते हुए कहते हैं कि यदि वह दूसरे पुरुष से जुड़ती है तो दोनों व्यभिचार करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे वे मत्ती 5:32 में कहते हैं। लेकिन भाषाई दृष्टि से गलती उस क्रिया के वास्तविक अर्थ से आती है जिसका अधिकांश बाइबलों में अनुवाद तलाक देना किया गया है, अपुलियो।
तलाक के रूप में अनुवाद आधुनिक रीति रिवाजों को दर्शाता है, लेकिन बाइबल काल में अपुलियो का अर्थ बस इतना था, छोड़ना, जाने देना, मुक्त करना, दूर भेजना, अन्य शारीरिक या संबंध परक क्रियाओं में। बाइबल के प्रयोग में अपुलियो में कोई कानूनी अर्थ निहित नहीं है, यह केवल अलगाव व्यक्त करने वाली क्रिया है जिसमें औपचारिक कानूनी कार्यवाही का भाव नहीं है।
दूसरे शब्दों में मरकुस 10:12 बस यह कहता है कि यदि कोई स्त्री अपने पति को छोड़कर दूसरे पुरुष से जुड़ती है जबकि पहला अभी जीवित है तो वह व्यभिचार करती है, कानूनी कारणों से नहीं बल्कि इसलिए कि वह अब भी प्रभावी वाचा को तोड़ती है।
निष्कर्ष। मरकुस 10:11 और 12 का सही पठन शास्त्र के बाकी हिस्सों के साथ संगति बनाए रखता है जो कुमारियों और विवाहित स्त्रियों में भेद करता है और एक गलत अनुवादित वाक्यांश पर आधारित नई शिक्षाओं को प्रस्तुत करने से बचता है। यह श्रृंखला और परमेश्वर की व्यवस्था पर अन्य कई अध्ययन पाए जा सकते हैं इस साइट पर परमेश्वर का नियम .org।